माघव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन धारी यमुना तीरावन धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय प्रभु प्रभु बाबा सब पदा शिला प्रभु बाबा प्रभु 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 पा जय प्रभु जय विश्वनाथ परमहंस परमजगाचार्य सूत्र श्री श्रीमदान अभयनानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णवंद की जय नवाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय समवेत भक्तवृंद की जय और गौरी सुदस्त मल्टीवोटी हरे कृष्ण और गौरी सुदस्त मल्टीवोटी हरे कृष्ण और गौरी सुश्री गुरु हरे कृष्ण भक्तों से प्रार्थनाएं सामने आ रहे हैं तो अच्छा रहेगा क्योंकि सीधे इस तरह बैठे हैं आप मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं इस युद्ध में अपने ही सज्जनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज या सुख की इच्छा रखता हूँ श्लोक संख्या 32 33 34 और 35 एक साथ दिया है हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही युद्ध में खड़े हैं हे मधुसूदन जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समझ खड़े हैं तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें हे जीवों के पालक मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों इस पृथ्वी के तो की तो बात ही छोड़ दें भला दिलदास के पुत्रों को मार कर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी फिर आज का एक श्लोक है जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है तो इसका हम लोग उच्चारण भी करेंगे अनुवाद और तात्पर्य भी करेंगे शुभ संख्या 36 पापम एवाशेदस्मान् अत्वेतानाततायिनः तस्मानारः वयं हन्तुम् भ्रात्राष्ट्रांसा बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याममाधव। आप बोले दो, यहां से बोले पुष्पक और दो माताओं की तरफ। एतान इन सब आदताइनः आदताइयों को तस्मात अतः न कभी नहीं अरहा योग्य वयम हम हंतुम मारने के लिए धृतराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को सब बांधवान उनके मित्रों सहित स्वजनम कुटुंबियों को ही निश्चय ही कथम कैसे अथवा मार कर सुखी नहा सुखी श्याम हम होंगे माधव हे लक्ष्मीपति कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यदि हम ऐसे आदताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार आदताई छह प्रकार के होते हैं। वृक्ष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आदताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आदताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु हैं, अतः वह उनके साधु वध व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का वर्ण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। यह है उसकी निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करें। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करके करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपती के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपती कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वह उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिसमें अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। ओम अज्ञान विवरणस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भगवदा मह्यं धराति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक में अर्जुन यहाँ पर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि उनके पुत्र आतताई हैं। श्री प्रभुपाद जी भी तात्पर्य बता रहे हैं कि आतताइयों का वध करने से कोई पाप नहीं लगता, और लेकिन अर्जुन का ये सोचना ये है, हालांकि अर्जुन कह रहे हैं कि वह आतताई हैं, लेकिन अर्जुन का ऐसा सोचना है कि फिर भी ऐसे लोगों को मारने से हमें पाप लगेगा। तो इसका कारण क्या है? कारण यह है कि अर्जुन को ऐसा लगा कि पहले हमें अपने स्वजनों की रक्षा करनी चाहिए, अपने कुटुंबियों को बचाना चाहिए, परिवार के सदस्यों की रक्षा करनी चाहिए, भले ही वो आतताई हों, ऐसा अर्जुन ने विचार प्रस्तुत किया है। लेकिन भगवान तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि आतताइयों का वध हो, और मनुष्य संहिता में भी बताया गया है कि 6 प्रकार की आतताई हैं ये, इनके इनको निश्चित रूप से मारना चाहिए। ऐसा नहीं करने से क्या होगा, पूरे परिवार के ऊपर कलंक लगेगा, पूरे परिवार के ऊपर दोष लगेगा। तो इस 6 प्रकार के आतताई कौन कौन से हैं, हम एक एक करके इसका वर्णन करेंगे। पहले हैं जहर देने वाले, विष देने वाले। तो जल क्रीड़ा का आयोजन किया गया था दुर्योधन के द्वारा, गंगा जी के तट पर बड़े बड़े तंबू गाड़े थे और बड़े बड़े वहाँ पे टेंट लगाए गए थे ताकि वहाँ पर विश्राम कर सकें, और बहुत सुंदर व्यंजन पकवान इत्यादि बनाया गया था, खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई थी, और युधिष्ठिर महाराज से प्रस्ताव रखा था कि वो भी चलें साथ में पांडवों को लेकर, तो वो भी तैयार हो गए थे, प्रस्ताव को सुन लिया था उन्होंने, स्वीकार कर लिया था, और वो भी इस जल क्रीड़ा में भाग लेने के लिए गए। तो क्या हुआ कि दुर्योधन ने पहले से ही ये योजना बना ली थी कि भीम को मैं जहर देकर मारूंगा, और जो भी खाना बनाया गया था वहाँ पर, भोजन बनाया गया था, उसमें विष मिलाया गया, और विष मिला के बड़े प्रेम से स्नेहपूर्वक आनंदपूर्वक जो है किसको खिलाया गया, भीम को खिलाया गया। और जल क्रीड़ा के उपरांत जब सब विश्राम कर रहे थे, सब थक चुके थे, तो भीम भी विश्राम कर रहे थे, वास्तव में वो तो अचेत हो गए थे क्योंकि विष उन्होंने खा लिया था भोजन के साथ, और लताओं की रस्सी बनाकर दुर्योधन ने भीम को उस लताओं से बांध कर गंगा जी में फेंक दिया, ऊंचे स्थान से। और लेकिन क्या हुआ, भीम की रक्षा पर भगवान श्री कृष्ण ने की, जल के भीतर जाकर भगवान ने रक्षा की, इस तरह से भीम की रक्षा हुई। तो इस हादसे के बाद कुंती देवी, माता कुंती देवी जो हैं, और जो अन्य पांडव से बड़े दुखी थे और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको पता था दुर्योधन जो है बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है। और दूसरा बताया गया है किसी के घर में आग लगाना, ये दूसरे प्रकार की आदताएं हैं। तो युधिष्ठिर महाराज और पांडवगण जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली गुरुकुल में, उस समय संपूर्ण राज्य यानी प्रजा गण चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो क्या बने, राजा बने। पांडु विशेष रूप से पांडु उनके जो पिता की मृत्यु होने के बाद युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े थे, वरिष्ठ थे, तो युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने की इच्छा थी। सब जो प्रजा के लोग थे वो चाहते थे कि महाराज युधिष्ठिर जो है वो राजा बने। और लेकिन दुर्योधन शकुनी कर्ण ये सब चाहते थे कि ये राज्य हड़प ले। उन्होंने दुर्योधन को बहकाना शुरू किया, उनको गलत सुझाव देना शुरू किया। और दुर्योधन की आज्ञा से कुंती महारानी पांडवों को कुछ समय के लिए वन में जाना पड़ा। तो दुर्योधन ने अपने मंत्री को बुला कुरुक्षण को कि वहां पर आप एक क्या बनाए, लाक्षाग्रह बनाए। लाक्षाग्रह लकड़ी से हो और अन्य भौतिक पदार्थों से, जिसमें जल से जल ज्वलनशील हो, आग लग जाए, ऐसी व्यवस्था की। और जब पांडव कुंती ये सब विश्राम कर चुके होंगे तो दरवाजे पर आग लगा सकते हैं। और इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे पूरे इसमें जो महल में आग लग जाएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ, लेकिन विदुर जी के संदेश से और भगवत कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से पांडव लोग लाक्षाग्रह से बच के निकल गए। लेकिन फिर भी आतताई तो कहलाएंगे दुर्योधन, ये सब आतताई थे कौरवों के लोग। कौरव जो हैं वो आतताई थे, दुर्योधन आतताई था क्योंकि वो आग लगा दिया उसने, आग लगवा दिया। और तीसरा बताया है अस्त्र शस्त्रों के द्वारा, अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा आक्रमण करना। जब पांडव लोग वन में गए थे 12 साल के लिए, उस समय कर्ण शकुनी और दुर्योधन उन्होंने पांडवों पर आक्रमण करना चाहे। क्या सोच के, ये सोच के कि जो पांडव हैं वो जंगल में रह रहे हैं, अब तो उनके पास सेना भी नहीं है, खाने पीने की ठीक से व्यवस्था नहीं है, तो कमज़ोर पड़ गए होंगे। तो उन्होंने सोचा कि यही मौका है, हम भय उत्पन्न करें पांडवों के लिए और उनके ऊपर आक्रमण करें। तो कौरवों ने ऐसा विचार किया, विशेष रूप से दुर्योधन चाह रहा था कि यही मौका है, हम बड़े आसानी से उनको मार पाएंगे। लेकिन जब दुर्योधन पहुंचे तो गंधर्व वहां पहुंचे थे, उनका नाम था चित्रसेन, और एक गंधर्व ने आक्रमण किया था। दुर्योधन को लेकर आकाश की तरफ वो चल पड़ा और न कर्ण रक्षा कर पाए उस समय, न शकुनी रक्षा कर पाए, कोई भी रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन हालांकि अर्जुन के साथ, उनके भाइयों के साथ ऐसा करने वाला था दुर्योधन, लेकिन अब अर्जुन ने जब देखा कि दुर्योधन को लेके जा रहे हैं चित्रसेन गंधर्व, तो दुर्योधन की रक्षा के लिए अर्जुन ने चित्रसेन के ऊपर आक्रमण किया और दुर्योधन की रक्षा की। लेकिन ये देखिए वैष्णव का गुण है, अजात शत्रु शांत रहा, कि हालांकि उनके ऊपर आक्रमण करने वाले थे लेकिन जब देखा कि वही खतरे में, उनका जीवन ही खतरे में है, तो अर्जुन उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो इस तरह से दुर्योधन को बचा लिया उन्होंने गंधर्व से और गंधर्व को हरा दिया। तो ये सब बहुत ध्यानपूर्वक हमें समझना है इस बात को, कि मतलब इन अस्त्र शस्त्रों के द्वारा आक्रमण किया दुर्योधन ने, उन्होंने सोचा कि वो निहत्ते हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, वन में रह रहे हैं, निर्बल होंगे, लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अर्जुन जो हैं, जिनके साथ परम भगवान श्री कृष्ण हैं, उनमें तो हमेशा बल रहता है। तो इस प्रकार ये दूसरे प्रकार, तीस प्रकार के आए आतताए हो गए। और आगे बताया है किसी का धन हड़प लेना। युधिष्ठिर महाराज ने न्योता दिया था दुर्योधन को और अन्य कौरवों को राष्ट्र यज्ञ में। राष्ट्र युग में युधिष्ठिर महाराज के ऐश्वर्य देखकर दुर्योधन बड़ा द्वेष करने लगा, और यहाँ तक उसने देखा कि कई बड़े बड़े राजा जो हैं युधिष्ठिर महाराज के चरणों में धन समर्पित कर रहे हैं। और उस समय धनराज से उन्होंने बातचीत की, और फिर क्या किया, उन्होंने पांडवों को जुए के लिए, दूध क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया, क्योंकि शकुनी बहुत दक्ष थे इस दूध क्रीड़ा में, जुआ खेलने में। और शकुनी जानते थे कि कौर पांडव जो है वो दक्ष नहीं है, बड़ी आसानी से उनको हराया जा सकता है, इस कारण से उन्होंने निमंत्रण दिया था जुए के लिए। और क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय को जब चुनौती दी जाती है जुए खेलने के लिए, युद्ध के लिए, तो क्षत्रिय का एक धर्म भी है, उसको मना नहीं कर सकता। हालांकि युधिष्ठिर महाराज की पांडवों की को जुआ खेलने की कोई इच्छा नहीं थी, उनका कोई विशेष कोई शौक नहीं था कि वो जुआ खेले, लेकिन जब चुनौती दी जाती है तो क्षत्रिय को कई बार इस प्रकार स्वीकार करना पड़ता है चुनौती, और उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया। विदुर जी ने यहाँ तक कि दुर्योधन धृतराष्ट्र को बताया विदुर जी ने कि दुर्योधन आतताई बना जा रहा है और ये जुआ खेलना बिल्कुल ठीक नहीं। और उसके बाद अगला है किसी का जमीन हड़पना, एंक्रोचमेंट होता ही आज के ज़माने में बहुत है, प्रॉपर्टी का एंक्रोचमेंट, और कई कोर्ट में कई ऐसे केसेस चल रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर। तो क्या हुआ था इस दूध क्रीड़ा के अनुसार, तो क्योंकि पांडव लोग जो है वो हार गए थे, उनको 12 साल वनवास में बिताना था और उसके बाद 1 साल अज्ञातवास में, और जब 13 साल के बाद उन्होंने राज्य मांगा पांडवों ने वापस आने के बाद, तो दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के तो मैं आपको सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता, खड़ी हुई सुई लेटी हुई सुई नहीं, खड़ी हुई सुई के बराबर, खड़ी हुई सुई की नोक के बराबर भी मैं आपको जमीन नहीं। तो दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के तो मैं दूंगा ही नहीं। तो यहाँ तक कि पर भगवान श्री कृष्ण जो दूध बंद कर आए थे, उन्होंने कहा कि आप 5 गांव दे दो कम से कम, उन्होंने कहा कुछ नहीं दूंगा। तो गांव देने के तैयार नहीं थे, जमीन देने के तैयार नहीं थे, और सुई के बराबर भी वो जमीन देने के तैयार नहीं थे। तो इस तरह से सारी जमीन हड़पना चाह रहे थे दुर्योधन, और इस तरह से वंचित कर दिया उनको राजेश। एक गाड़ी खड़ी है गेट के पास 2565 हटा लीजिए, और किसी अन्य की पत्नी का अपहरण कर। युधिष्ठिर महाराज सब कुछ हरा चुके थे जुआ में, सारी संपत्ति हरा दी उन्होंने, सारा राज्य उन्होंने हरा दिया, और यहाँ तक कि द्रौपदी जी को भी दाव में लगाना पड़ा। हालांकि भीम बड़े क्रोधित हुए थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का और कोई चारा नहीं है। तो इस प्रकार द्रौपदी जी को जो दाव में लगाया गया, उनको अपमानित किया गया, दुशासन ने अपमान किया, उनके केश पकड़े, उनके वस्त्र उतारने का प्रयास किया गया, उनको भरी सभा में आधारित करने का प्रयास किया गया, किसी ने कुछ कहा नहीं। विदुर जी ने कहा, सातक जी ने कहा, लेकिन और किसी ने कुछ कहा नहीं। भीष्म पितामह ने भी कुछ नहीं बोला, द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं बोला, कर्ण ने भी वैश्या करके बुलाया द्रौपदी को, बहुत पूरी तरह से अपमानित किया द्रौपदी जी को। द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी जी हैं, उनकी भरी सभा में अपमान हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार जो है दुर्योधन और कौरव सेना थी, ये कौरव थे वो सब पूर्ण रूप से आतताई बन चुके थे, है कि नहीं। कई बार बोलते हैं कि भगवान जो है हमेशा भक्तों का साथ देते हैं, देवताओं का साथ देते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा लगता है पक्षपात कर रहे हैं। अब ये सब जानने के बाद कि कौरवों ने क्या क्या अत्याचार किया, क्या क्या उन्होंने किया, किस तरह से आतताई थे, कौन नहीं चाहेगा धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो। तो कौरवों ने जो है बहुत अत्याचार किया था इस तरह से, कोई तो बातें कर रहे हैं बीच में। तो लेकिन परम भगवान श्री कृष्ण बड़े कृपालु हैं, उन्होंने काफ़ी वस्त्र दिए द्रौपदी जी को और द्रौपदी जी का जो मान बचाया, लेकिन फिर भी दुर्योधन तो आतताई बन ही चुका था। और यहाँ पर एक शब्द आया माधव, माधव यहाँ पर शब्द आया, बिल्कुल आखिरी शब्द है। तो माँ का मतलब होता है लक्ष्मी और धव का मतलब होता है पति, यानी कि लक्ष्मी पति। लक्ष्मी पति कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण। तो परम भगवान कृष्ण के चरणों में ही लक्ष्मी जो है स्थिर रहते हैं, नहीं तो भगवान का एक नाम क्या है? चंचलापति। चंचलापति इसका मतलब क्या है कि लक्ष्मी जी चंचल हैं और भगवान के चरण में ही, भगवान के चरणों में ही वो चंचलता त्यागती है, स्थिर रहते हैं और अन्य सभी स्थानों में वो चंचल रहती है। तो जो भी लक्ष्मी जी को भोगना चाहेगा स्वतंत्र रूप से, तो लक्ष्मी जी कभी भी एक जगह पर रहेंगे नहीं। और लक्ष्मी जी बताते हैं जब उनको स्वतंत्र रूप उनकी पूजा होती है तो फिर वो माया के रूप में आती हैं और उल्लू में बैठकर आती हैं। तो इसलिए लक्ष्मी का स्वतंत्र रूप से कभी भी उपभोग नहीं किया जा सकता है। रावण को भी देखिए, जब सीता जी को ले गए तो संपूर्ण राज्य जो है उनका नष्ट हो गया रावण सहित। तो इस तरह से लक्ष्मी जी के बारे में बताया गया है कि लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई थी क्षीर सागर से, भागवत के आठवें स्कंध में कि आठवें अध्याय में ये बताया, कथा बताई गई है, जब क्षीर सागर का मंथन किया देवताओं और असुरों ने तो उस समय लक्ष्मी जी प्रकट हुए और लक्ष्मी जी ने देवताओं को स्वीकार नहीं किया, लक्ष्मी जी ने असुरों को स्वीकार नहीं किया। लक्ष्मी ने किसको स्वीकार किया? भगवान को स्वीकार, भगवान कृष्ण को स्वीकार किया, भगवान विष्णु को स्वीकार किया। और इसका क्या कारण है तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे कि क्या कारण, किन कारणों से, ऐसे क्या गुण देखे उन्होंने भगवान में लक्ष्मी जी ने कि उन्होंने भगवान कृष्ण को जो है अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहा। तो तपस्या पहला है, पहला गुण क्या आकर्षित किया लक्ष्मी जी को? तपस्या। तो वास्तविक तपस्या क्या है? मन और बुद्धि और वाणी के द्वारा जहाँ हम पवित्र कार्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको तपस्या कहते हैं। लेकिन अगर कोई मन से वाणी से क्रोधित होता है बिना किसी कारण के, तो तपस्या ऐसे में भंग हो जाती है क्रोध के कारण। जैसे बताते हैं कि एक बर्तन में छिद्र हो और दूध रखा हो तो दूध जो है उस छिद्र से बाहर निकल जाता है। इसी तरह से कोई तपस्या कर चुका है बहुत लेकिन क्रोधित होता है, वो सारी की सारी तपस्या बेकार हो जाती है। विश्वामित्र मुनि जो हैं उन्होंने 1000 साल तपस्या की पहले, तो 1000 साल तपस्या जब की तो मेनका जी प्रकट हुई स्वर्गलोक से और कामासक्त होकर विश्वामित्र मुनि और मेनका ने उनको बहुत आसानी से गिरा दिया, यानी कि पतन हो गया विश्वामित्र मुनि का। फिर से विश्वामित्र ने फिर से प्रयास किया, फिर से 1000 साल फिर से तपस्या की उन्होंने। इस बार रंभा आ गई एक और अप्सरा और रंभा को देखकर इस बार कामासक्त नहीं हुए, इस बार क्रोध हो गए, क्रोधित हो गए विश्वामित्र मुनि और क्रोधित होकर उन्होंने रंभा को शाप दे दिया कि आप पत्थर की मूर्ति बन जाओ। तो पहले काम के वशीभूत हुए अब क्रोध के वशीभूत हुए, तो इस तरह से उनकी तपस्या भंग हो गई। तो लेकिन हम देखते हैं भगवान जो कि नरनारायण के रूप में प्रकट हुए बद्रिका आश्रम में, इंद्र ने जब अप्सराओं को भेजा तो अप्सराओं को जब भेजा इंद्र ने नरनारायण ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए, तो उन्होंने अप्सराओं को ही मोहित कर लिया। नरनारायण ऋषि ने अपनी शक्ति के द्वारा उन्होंने और स्त्रियां प्रकट की जिससे अप्सराएं भी देखकर मोहित हो रहे, तो अप्सराएं जो सब वापस चले। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान जो है उनके ऊपर इस प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये गुण से बड़े प्रभावित हुई थी लक्ष्मी जी उनकी तपस्या को देखकर। और दूसरा है ज्ञान। ज्ञान कैसे नष्ट होता है? ज्ञान नष्ट होता है आसक्ति से, क्रोध से तपस्या नष्ट होती है और आसक्ति से क्या नष्ट होता है? ज्ञान नष्ट होता है। गर्ग संहिता में बताया गया है कि एक बार जो है गोपियों को यमुना जी को पार करना था, और उन्हें कहा, गोपियों ने यमुना जी को कहा कि अगर कृष्ण नैतिक ब्रह्मचारी हैं तो आप हमें जाने दें, क्योंकि गोपियों का संबंध भगवान कृष्ण से बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है। और जब ऐसी प्रार्थना उन्होंने की कि यमुना जी जो है उन्होंने रास्ता दे दिया और गोपियां बड़ी आसानी से यमुना जी को पार कर पाए, तो लेकिन गोपियां बिल्कुल भीगी नहीं, बड़ी आसानी से पार किया उन्होंने। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है कि परम भगवान श्री कृष्ण कौन है, तो इस प्रकार परम भगवान श्री कृष्ण जो है सर्वज्ञ हैं। सर्वस्य चाहमिति सन्निविष्टो मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चहम। 15वां अध्याय 15वां श्लोक भगवद्गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों की रचना तो मैंने की है, वेदों के द्वारा मुझे जाना है। वेदों की रचना मैंने की है, और वेदांत कौन है? भगवान कहते हैं मैं ही वेदांत हूँ। वेदों का यानी वेद का लक्ष्य क्या है, वेद अध्ययन करने का लक्ष्य क्या है? परम भगवान श्री कृष्ण को जानना और उनकी सेवा करना। भगवान कहते हैं कि सभी के हृदय में वास करता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबको जानता हूँ लेकिन सब मुझे नहीं जानते हैं, कोई मुझे नहीं जानता, मैं सबको जानता हूँ। तो भगवान जो है सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता है, और इस गुण को देखकर लक्ष्मी जी बड़े प्रभावित हुए। और वास्तविक ऐश्वर्य क्या है? जब कोई किसी पर निर्भर हो जाता है तो उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। जब ऐश्वर्य की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि दूसरों के ऊपर नियंत्रण करना। कोई कहता है कि मैं इसको नियंत्रण कर रहा हूँ, उसको नियंत्रण कर रहा हूँ, लेकिन जब तक हम किसी के ऊपर निर्भर हैं तब तक वास्तव में हम नियंत्रण नहीं हैं। ब्रह्म संहिता में क्या बताया? ईश्वर परमः कृष्णः, कि परम भगवान कृष्ण ही वास्तव में क्या है? परमेश्वर है। और इस तरह से ब्रह्मा जी ने भी देखा कि ब्रह्मा जी ने जब कृष्ण के ऐश्वर्य को जानना चाहा कि भगवत ऐश्वर्य क्या है, भगवान का ऐश्वर्य क्या है, उन्होंने बछड़ों को चुरा लिया, उन्होंने ग्वालों को चुरा लिया, लेकिन फिर भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी प्रभावित हुई कृष्ण के इस ऐश्वर्य से। और महानता क्या है, वास्तविक महानता क्या है? वास्तविक महानता है, देखिए जब भौतिक इच्छाएं क्या करती हैं, हमारी महानता को नष्ट कर देती हैं। जैसे भगवान की महानता क्या है? भगवान की महानता यह है कि उन्होंने दुर्योधन के 56 भोग को स्वीकार नहीं किया, लेकिन विदुर जी के सरल भोग को स्वीकार किया, है कि नहीं? क्योंकि भगवान जो है विषयी लोगों से नहीं खाते हैं, भगवान तो भक्तों के हाथ से खाते हैं। तो इसलिए दुर्योधन के घर ना जाकर भगवान जो है विदुर जी के घर गए। तो इस तरह से ये भगवान की महानता है। सुदामा जी द्वारका आए तो भगवान ने क्या किया, उनको अपने शैया में बिठाकर उन्होंने स्वयं भगवान ने क्या किया, सुदामा जी के चरणों को धोया। ये भगवान की महानता है, ये भगवान की महानता है कि अर्जुन का रथ फांक रहे हैं भगवान कृष्ण, परम भगवान हैं लेकिन फिर भी सारथी बने हुए हैं, ये उनकी महानता है। इस प्रकार से उनके इस महानता को देखकर लक्ष्मी जी बड़ी प्रभावित हुई हैं और उन्होंने उनको पति के रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद वास्तविक धर्म, वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म का मतलब ये है कि जब धर्म का नाश कब होता है, जब हम दया की भावना हमारी समाप्त हो जाती है। जीव के प्रति जब दया दिखाना बंद कर देते हैं तो हमारा धर्म नष्ट हो जाता है कि नहीं? भगवान भगवद्गीता में क्या कह रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवा नाम शांति मुच्छत, कि जो जानता है कि वास्तव में सभी जीवात्माओं को मैं सुहृद हूँ वो शांति को प्राप्त करता है। ये जानकर वो शांति को प्राप्त करता है। 5वें अध्याय 29वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान कितने दयालु हैं, हम सुअर की योनि में जाएं, शुकर कुकुर के योनि में जाएं, पशु योनि में जाएं, पक्षी की योनि में जाएं, वृक्ष की योनि में जाएं, भगवान वहाँ भी मौजूद होते हैं परमात्मा के रूप में और हमारे पर दया दिखाते हैं। ते भगवान की महानता है सुहृदम सर्वभूतानम। तो वास्तविक धर्म यह है कि जब हम दया की भावना दिखाएं, और भगवान सबसे दयालु हैं, दया के सागर हैं भगवान। और उसके बाद वास्तविक शक्ति क्या है, वास्तविक शक्ति का मतलब यह है कि काल के प्रभाव के द्वारा हमारी सारी शक्ति नष्ट होने लगती है। हिरण्यकश्यपु कितना शक्तिशाली था, लेकिन भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकश्यपु के लिए काल के रूप में प्रकट हुए। कंस के लिए भगवान कृष्ण काल के रूप में प्रकट हुए। भगवान दसवें अध्याय में बता रहे हैं भगवद गीता के, मृत्यु सर्व हरश्च हम, कि मृत्यु के समय सब कुछ हर लेता हूं, किसका, जो भक्त नहीं, जो अभक्त है उनको भी भगवान दर्शन देते हैं। किस रूप में, मृत्यु के रूप, उनको भी दर्शन होता है, अभक्तों को भी दर्शन होता है भगवान का, है ना, लेकिन काल के रूप में होता है। तो इस तरह से भगवान की शक्ति देखकर जो है भगवान लक्ष्मी जी बड़ी प्रभावित हुई हैं। तो ये सब गुण जो है लक्ष्मी जी को आकर्षित कर रहे हैं, और इस कारण से लक्ष्मी जी ने भगवान को ही पति के रूप में स्वीकार किया। तो इस प्रकार यहाँ पे अर्जुन जो है ना कि कह रहे हैं कि ये सब हालांकि आदत आई हैं, लेकिन फिर भी हमारे स्वजन हैं, रिश्तेदार हैं। आसक्ति देहात और बुद्धि जब हो जाती है तो हम लोग भूल भी जाते हैं कि सामने वाले के साथ जो हम संबंध स्थापित कर रहे हैं उससे हमें क्या लाभ मिला, क्योंकि हम लोग इतने मोहित हो जाते हैं कई बार उस संबंध के द्वारा कि हम भूल जाते हैं कि ऐसे संबंध से हमारा अनिष्ट होगा, ऐसे संबंध से हमारा कोई लाभ नहीं होगा। विषय लोगों का संग करना, असत संग में रहना, इससे भक्ति में कोई लाभ नहीं होगा। जैसे भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर एक कथा सुनाते हैं जिसमें बारात जो है जा रही है शादी के लिए, और सब नाव में बैठ गए हैं बराती, और रात्रि का समय है, कैवट जो है नाव को चला रहा है, सुबह देखा नाव वहीं खड़ी हुई है, लंगर निकाला नहीं, नाव आगे बढ़ी नहीं, है कि नहीं। तो जब तक हम लोग आसक्ति को नहीं त्यागेंगे, सांसारिक आसक्ति को नहीं त्यागेंगे, तब तक हम भगवान की शरण में कैसे जाएंगे। जानते हैं अर्जुन कह रहे हैं कि ये सब आदत आई है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि सब हमारे स्वजन है, इनको मारने से पाप नहीं है। बताइए कितना बड़ा मुंह है, देखिए, है कि नहीं। इसको मुंह, इसी को मुंह कहते हैं। लेकिन गलत व्यक्ति को तो दंड देना जरूरी है, अगर चोर को चोर ना कहा जाए तो फिर पूरा राज्य जो है चोरों से भरा हुआ है कि नहीं। जिस प्रजा में राजा का दंड ना दे तो उस राज्य में क्या होगा, चोर उठके घूम जाएंगे, घूमते रहेंगे और बढ़ जाएंगे चोर उठके, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो क्षत्रिय होने के नाते भी अर्जुन का कर्तव्य था कि आतताइयों को दंड दे। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि आतताइयों को दंड दे। सब तो एक दूसरे को मार नहीं सकते हैं, एक व्यवहारिक नहीं है समाज में कि देखिए आप आतताइयों आपको मार दूँ, ये आतताइयों इनको मार दूँ। तो ये क्षत्रियों का धर्म है वास्तव में, जो इस प्रकार जिम्मेदारी ले सकते हैं कि जो आतताई है उनको मारा जाए, ये बहुत जरूरी है, या उनको दंड दिया जाए। तो ये सब करने से क्या, जैसे कोई अगर बहुत घिनौना अपराध करता है, पाप करता है, तो उसको फांसी की सजा दी जाती है राजा के द्वारा। आजकल तो शायद फांसी की सजा भी नहीं दे रहे हैं, उम्र कैद देते हैं, लेकिन फांसी की दे देना, सजा देना जरूरी है। मनु संहिता के अनुसार अगर हत्या करने वाले को अगर इस प्रकार का दंड नहीं दिया जाता तो अगला जन्म उसको बहुत तड़पना पड़ता है। इससे राजा जब इस प्रकार का दंड देता है, फांसी की सजा देता है, तो फिर अगले जन्म उसको कम परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इस जन्म में प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। लेकिन असली प्रायश्चित क्या है, असली प्रायश्चित है परम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना, हरे कृष्ण भाव मुझे जप करना, ये असली प्रायश्चित। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि आपने जो उपाय बताया है, कर्मकांड की विधि बताई है मुझे, ये सब क्या है, हाथी स्नान के समान है। हाथी स्नान करता है और अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है, तो ये तो कोई सही उपाय नहीं आपने बताया। यदि परीक्षित महाराज की परीक्षा ले रहे थे सुखदेव गोस्वामी, इसलिए वो ये रास्ता बताया कर्मकांड का। फिर उन्होंने बताया ज्ञान कांड का रास्ता है, तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, जिस तरह से फिर बताया, लेकिन ऐसा है कि ज्ञान ज्ञान में होता गया है कि वृक्ष जो है अश्वत्थ वृक्ष है या फिर वट वृक्ष है, उसके नीचे क्या होता है, कई बार सूखे पत्ते उगाते हैं, पत्ते और भी उगाते हैं वृक्ष आस पास, जब आग लगती है जंगल में तो वो पत्ते जल जाते हैं, है कि नहीं, लेकिन जब बरसात होती है वो पत्ते फिर से आ जाते हैं। क्यों? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक जड़ से जो है नहीं समाप्त किया जाएगा पाप को, पाप के बीज को जड़ से नहीं समाप्त किया जाएगा, फिर से अंकुरित होने की संभावना बनी रहती है, तो ये ज्ञान का मार्ग भी जो है ठीक नहीं है। फिर सुखदेव गोस्वामी खुद ही बताते हैं, ठीक है, केचित् केवल या भक्त्या वासुदेवा परायणा, वो कहते हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति जो करता है, परम भगवान से जिसमें शुद्ध भक्ति करता है या शुद्ध भक्तों की सेवा में जो लगता है, शुद्ध भक्तों की सेवा करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे परीक्षित महाराज, और इसको साबित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी अजामिल की कथा सुना। अजामिल की कथा बहुत सुंदर कथा है, कभी वो कथा हम सोच रहे हैं यहाँ में कभी करें, बहुत कुछ शिक्षा है उसमें, नाम की महिमा बताई गई। तो उसमें नाम की महिमा क्या बताई गई, अजामिल कितना पापी था, अजामिल इतना पापी था, वैश्या को उसने घर पर रखा हुआ था, कई संतानें हो गई थी उसकी, और आखिरी जो संतान थी वो अभी गर्भ में था बच्चा, तो वहाँ पे चार संत आए उस गाँव में, चार संत जो गांव में आए थे उन्होंने पूछा, वहाँ पर बच्चे घूम रहे थे, उनसे पूछा कि यहाँ पर कोई रहने की जगह है, तीर्थयात्री है, तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा ब्राह्मण है यहाँ पर, बच्चों ने मजाक किया कि बहुत ही विद्वान ब्राह्मण है और बहुत अच्छा ब्राह्मण है, आप उसी घर पर रुक जाइए। अरे कहाँ पे, अजामिल के घर पे भेज दिया बच्चों ने, अब इन संतों को तो पता ही नहीं कि अजामिल कौन है, तो वैश्या का घर है, तो अजामिल के घर जाके रुके। अजामिल उस समय गया हुआ था बाहर कोई उल्टा सीधा काम करने, तो ये बच्चे ने पीछे खड़े हंस रहे थे, तो वो चार संत वहाँ रुके, तो वैश्या से मिले तो पता चल गया वैश्या का घर है बाद में, तो वैश्या को देखकर बड़ी करुणा जागृत हुई उन संतों में। उन संतों ने कहा कि बच्चा होने वाला आपको हमारी प्रार्थना है, आप इसका नाम नारायण रखिएगा। संतों ने कृपा कर दी, तो उन्होंने कहा ठीक है, बच्चे और बच्चे का नाम नारायण रखा गया, और अजामिल को जो बताया कि इस तरह से संत आए हैं और बच्चे का नाम नारायण रखना चाह रहे हैं, तो अजामिल ने कहा ठीक है, आज से हमारे बच्चे का नाम नारायण है। ऐसा जब अजामिल ने जो उच्चारण किया भगवान के पवित्र नाम का, तो वहाँ बताते हैं, श्रीधर स्वामी बता रहे हैं, उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, उसी समय सारे के सारे पाप नष्ट हो गए, केवल नारायण नाम का उच्चारण करने मात्र से। ये नाम की महिमा, सोचिए देखिए आप नाम की कितनी बड़ी महिमा है, देखिए है ना। अफकोर्स हमें नाम के बल पर पाप नहीं करना है, लेकिन चले का मतलब ये नाम की महिमा बताई गई है। अजामिल चूंकि पहले भक्त था, लगभग 25 साल की उम्र तक भक्त था अजामिल, नारायण शिला की सेवा पूजा करता था, मार्ग से भटक गया, वैश्या के कुसंगति में पड़ गया, लेकिन भगवान भी रक्षा करते हैं ना, भगवान देख रहा है मेरा भक्त था लेकिन कहाँ ये फंस गया है, तो भगवान ने संतों को भेजकर अजामिल के ऊपर कृपा की, और इस तरह से अजामिल को पवित्र नाम मिला। अनजाने में अजामिल ने नाम पुकारा, अपने बच्चे को पुकारा, यानी कि जीवन के अंतकाल में जब नारायण चार के तब उसके पाप नष्ट हुए नहीं, जैसे ही नामकरण हुआ उसी दिन, बताते हैं श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जिस दिन अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया, भगवान वैकुंठ में बैठे थे, भगवान ने चिंतन किया ये तो मेरा भक्त है। अजामिल को क्या माना भगवान ने कि ये मेरा भक्त है क्योंकि इसने मेरा नाम लिया है। अजामिल को भगवान ने अपना भक्त मान लिया जिस दिन उसने नारायण नाम का उच्चारण किया, हालांकि अभी भी वैश्य को त्यागा नहीं था अजामिल ने। देखिए कितनी बड़ी बात है, भगवान क्या देखते हैं, भगवान अच्छाई देखते हैं, भगवान सद्गुण देखते हैं। अपि चे सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्या सम्यक् भविष्यतो हि सा। तो किसी को अगर सुधारना भी है, किसी का उद्धार भी करना है, पापी को नहीं मारना है, उसके पाप को नष्ट करना है, इस तरह से सुधार होता है। और इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, अजामिल का सारा ध्यान बच्चे पर गया, और जीवन के अंत काल में जब यमदूत आए, यमदूतों को तो लगा ऐसे पाप किए, 88 साल की उम्र तक जो है वो घर पर ही था और शैया पर लेटा हुआ था मृत्यु की शैया में, और अजामिल को लेने के लिए यमदूत जब आए तो बहुत भयभीत होकर उसने फिर से अपने बच्चे को पुकारा। बच्चे को रोज पुकारता था, नारायण मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, नारायण मेरे कपड़े लेके आओ, नारायण मेरे जूते लेके आओ, मेरे जूते लेके आओ, नारायण मेरे वस्त्र लेके आओ, नारायण 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 चलता था पूरे दिन। तो अजामिल सुबह से शाम तक नारायण नारायण का उच्चारण कर रहा था, हालांकि वो अपने बच्चे को पुकार रहा था। अब उसका ध्यान वैश्य में इतना नहीं था, सारा ध्यान बच्चे में था। हालांकि अभी भी पूर्ण रूप से आसक्ति नहीं थी आगे थी, लेकिन जीवन के अंतकाल में यमदूत आगे लेने के लिए अजामिल को विश्वदूत भी वहां से पहुंचे। उन्होंने कहा कि कहां ले जा रहे हो, छूना नहीं इसको, नहीं तो आप हमें खैर नहीं। विश्वदूत को देख देख कर यमदूत रुक गए, और बाद में फिर यमदूतों ने विश्वदूत के साथ संवाद हुआ। बहुत सुंदर संवाद है, बहुत सुंदर संवाद है, सुने लाएंगे भागवत में किस तरह से बताया गया है। बताया गया है कोई अगर दुर्घटना के समय कोई अगर कहीं से गिरता है, किसी मार्ग से गिरता है उस समय, या फिसल जाता है सड़क पर गिर जाता है, पलंग से गिर जाता है, ऐसे में जब गिरते हुए ऐसे दुर्घटना के समय जब नाम का उच्चारण वो करेगा ऐसा व्यक्ति, तो उस समय उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कितनी नाम की महिमा बताएगी, लेकिन नाम की असली महिमा यह नहीं है। नाम की महिमा है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान की प्रेम में सेवा प्राप्त करना। अजामिल उसके बाद हरिद्वार गया और मंदिर में रहने लगा वहां पर जाके, और श्रवण कीर्तन में लगा रहा, और वही विश्वदूत जो पहले आए थे वही विश्वदूत जो अजामिल को वैकुंठ धाम ले गए। एक ही जीवन में हुआ ये सब, एक ही जीवन में हुआ। और ये कथा जो है कलयुग की कथा है, लेकिन इस मनमंत्र इस कल्प की नहीं है, किसी और कल्प की कथा है, किसी और कल्प में कलयुग की कथा है। तो हरिद्वार में जाकर जो है अजामिल ने फिर शरीर छोड़ा था कुंड धाम के पास। तो इस प्रकार से आतताइयों का असली वध करना है अगर कलयुग में, कलयुग में तो प्रत्येक घर में कहीं ना कहीं आपको आतताई दिखाई पड़ेंगे, है कि नहीं। किसी प्रकार के आतताई तो समाज में भरपूर मात्रा में मिलते हैं, लेकिन कैसे वध करें फिर इन सबका, इतने सारे लोगों का। तो इन सबका वध किया जा सकता है केवल हरिनाम के माध्यम से, हरिनाम के द्वारा इन सब का हृदय शुद्ध हो जाएगा, इन सब का हृदय पवित्र हो जाएगा, ये सब भगवान की सेवा में लग पाए। और प्रभुपाद ने करके दिखा दिया पूरे संसार में, प्रभुपाद ने पूरे पृथ्वी में कितने सारे आतताइयों को भक्त बना दिया, है कि नहीं। तो इस तरह से हम भी आज भी पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे लड़ने का तरीका अलग है। हम लोगों ने हरिनाम का अस्त्र स्वीकार किया है, और इस हरिनाम के अस्त्र के द्वारा हम प्रत्येक पापी के हृदय को शुद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, खुद भी शुद्ध बनने का प्रयास कर रहे हैं, और उस तरह जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास। आने वाली जन्माष्टमी में बहुत सारी सेवाएं हैं, हम सबको सेवा स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्णा हैज टेकन बर्थ इन द होम ऑफ स्टोन। इसका मतलब क्या है, प्रभुपाद ने बताया कि किस तरह से शास्त्र में वर्णन किया गया, प्रभुपाद ने किस सुंदर तरीके से परम भगवान श्री कृष्ण को प्रस्तुत किया हमारे समक्ष। प्रभुपाद की कृपा से हम जान पा रहे हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो ये बात प्रभुपाद ने साबित करके दिखाया पूरे पृथ्वी में, है ना। और जिस तरह से आज कृष्ण भावना अमृत का जो है संघ का जो प्रचार हो रहा है पूरे पृथ्वी में, तो बड़ी तेजी से लोग कृष्ण भावना को स्वीकार कर रहे हैं। तो जन्माष्टमी ऐसा उत्सव है कि पूरे पृथ्वी में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है जब जन्माष्टमी ना मना रहे। तो भगवान की ख्याति, भगवान का यश फैलता जाता है, और ये सब शुद्ध भक्तों की प्रयास से हो रहा है, भक्तों के प्रयास से हो रहा है। आज पूरी पृथ्वी में लोग भगवान को जान पा रहे हैं, जन्माष्टमी को सब सब जगह मनाया जा रहा है। तो आपके गुड़गांव में भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी 10 तारीख को। आप सब सेवा में जुड़िए, जितने अधिक हम सेवा करेंगे उतना अधिक हमारा मन जो है निर्मल होगा, और हमारे हृदय में जो आतताई बनने की जो भावना है बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। हम सब पवित्र हो जाएंगे, सब शुद्ध हो जाएंगे। भगवान का जन्मदिन अगर मनाते हैं तो हमारा दोबारा संसार में जन्म नहीं होगा, जन्माष्टमी मनाने का ये उद्देश्य है। हमारा दोबारा संसार में कौन जाता है, दोबारा संसार में जन्म ना हो, खुद लोग चाहते हैं। हमें से कितने लोग हैं जो भगवान के धाम जाना चाहते हैं, सब चाहते हैं ना। तो तभी होगा जब भगवान का जन्मदिन मनाएंगे, जन्माष्टमी मनाएंगे। भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, लेकिन भगवान नरलीला जब करते हैं, नर रूप में आते हैं, दिखाते हैं कि उनका भी जन्मदिन हो रहा है। वो भी माता यशोदा के गर्भ से प्रकट होते हैं या माता देवी के गर्भ से प्रकट होते हैं। तो हम सबका सौभाग्य है, भगवान हमें मौका दे रहे हैं कि हम उनका जन्मदिन मना सके हर्षोल्लास से, आनंद पूर्वक। कई ऐसे लोग हैं जो सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने जन्मदिन में। एक व्यापारी जिसने 100 करोड़ खर्च कर दिया अपने जन्मदिन में, जानते हैं आप, आपके गुड़गांव में ही अपने जन्मदिन में 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उसमें। 5 दिन का उत्सव बनाया उसे, 80 साल की उम्र हो गई। तो ऐसे 100 करोड़ से कितनी जन्माष्टमी बना सकते। तो आपके जन्मदिन में हो सकता है कि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 लोग हैं, लेकिन भगवान की जब जन्माष्टमी मनाई जाती है, भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है, तो लाखों लाखों लोगों को लाभ मिलता है। तो इसलिए हम लोगों को जन्मदिन मनाना ही है तो परम भगवान श्री कृष्ण का मनाना चाहिए और बड़े उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए, है ना। श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है जन्माष्टमी के बारे में कि जन्माष्टमी का मतलब है विग्रह के साथ, उनके अच्छे विग्रह के साथ उत्सव मनाना, श्रवण कीर्तन के द्वारा और कई तरह की सेवाओं के द्वारा। तो हम सबको भगवान मौका दे रहे हैं, बहुत सारी सेवाओं के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। अभी आपको दिखाया जाएगा, हमारे गुरुगांव के भक्त आपको दिखाएंगे कि जन्माष्टमी कौन कौन सी सेवाएं आप सबके लिए हैं। उन सभी सेवाओं में आप सब जुड़िए और अपना जीवन सफल बनाइए। एक आध प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ जी, युग युग। हाँ जी, हाँ जी, नहीं हर बार नहीं लेते हैं, भगवान लेते हैं सातवें मनमंत्र में, जो वैवस्वत मनमंत्र है, और जो उसमें वैवस्वत मनमंत्र में जो 28वां जो कल्प आता है, 28 जो साइकिल आता है, 28 साइकिल आता है, उसमें जो द्वापर युग आता है, उसमें द्वापर युग में अष्टमी के दिन अष्टम गर्भ से भाद्र मास में परम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। लीला लगभग सेम ही होती है, लेकिन थोड़ा बहुत भेद होता है, लगभग वही होती लीलाएं, थोड़ा बहुत अलग अलग। जैसे गर्भ संहिता में पढ़ेंगे लीलाएं, तो उसमें भी लीलाएं कुछ अलग तरीके से भी प्रस्तुत की गई हैं, श्रीमद् भागवत में कुछ अल्प तरीके से हैं। तो ये एक ही कल्प भेद है, तो एक कल में ऐसी लीला हुई, दूसरे कल में एक लीला हुई, लेकिन हाँ गोवर्धन लीला जरूर होगी, वो नाम तो जरूर गोवर्धन लीला जरूर होगी, लेकिन लीला में थोड़ी वैरायटी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप हर शनिवार को गुड़गांव में तो आएंगे, मंदिर में तो आएंगे, लेकिन हो सकता है एक सैटरडे को फीस्ट हो, एक सैटरडे को सिंपल प्रसाद हो, एक सैटरडे को आप मिस्टी दही खाएं, एक सैटरडे को आप कुछ और खाएं प्रसाद में। तो इस तरह से वैरायटी है ना। तो इसी तरह से परम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, तो लीलाएँ वही होती हैं, गोवर्धन लीला भी होती है, मथुरा भी जाते हैं कृष्ण वृंदावन छोड़ के, महाभारत का युद्ध भी होता है, सब होता है, लेकिन उससे थोड़ा भेद होता है। तो ये वैवस्वत मनमंत्र चल रहा है, सातवां मनमंत्र है, और इससे पहले 6 मनमंत्र बीत चुके हैं। एक मनमंत्र में 71 चतुर्युग होते हैं, 4 युग है ना, तो 71 साइकिल्स होते हैं, जो 71 साइकिल्स बीत जाते हैं वो एक मनमंत्र कहलाता है। तो इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 बीत गए, ये सातवां मनमंत्र है। तो सातवें मनमंत्र में 71 साइकिल्स हैं, 71 साइकिल में जो 28वां साइकिल है उसके द्वापर युग में परम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, और उसके बाद जो कलयुग आता है उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, कहीं लगभग 1000 कलयुग के बाद। हाँ जी, ये तो पता नहीं, कोई सूचना नहीं है, इनकी चिंता आज कर रहे हैं, जानवर धाम चला के पत्नी के बारे में कुछ व्याख्या नहीं है, कोई पता नहीं, किसी को पता हो तो बता सकते हैं। भागवत में तो कोई लिखा नहीं है, भागवत ने तो बोला कि पीछे मुड़के नहीं देखा उन्होंने, शैया से उठे और सीधा हर बार चल गए। अब 28 साल की उम्र में क्या चिंता करेंगे, और क्या चिंता करें, जब उनको अनुभूति हो गई भैया बहुत हो गया, मैं चला पैदल भी शरीर छोड़ने वाला हूँ, ये तो दोबारा मौका मिल गया, भगवान ने इसी शरीर में तुम्हें दोबारा जीवन दे दिया मुझे, अब मैं चला हरिद्वार, चुपचाप निकल गए वहीं से पिछले दरवाजे। और कोई प्रश्न? हाँ, मन क्या है? मतलब मन क्या मतलब मन मन है, मन में इच्छाएं भरी हुई है, मन यहाँ भी है शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर होता है। लेकिन मन जो है बेसिकली उसके कार्य है संकल्प करना, विकल्प करना। लेकिन ये जो मन में जो इच्छाएं आती हैं वो हमारी दूषित चेतना से आती हैं। चेतना जो हमारी है, दूषित चेतना जो है, उसमें सारे संस्कार भरे हुए हैं। मन जो है केवल उसको प्रोसेस करके आगे भेजता है और इंद्रियों से कार्य होता है। तो मन जो है बहुत सूक्ष्म तत्व है, हमारे शरीर में ही है, बहुत सूक्ष्म तत्व है। कोई कहता है यहाँ पर है, कोई कहता है यहाँ पर है, कहीं भी है तो शरीर के अंदर ही। मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है और मन का कार्य है संकल्प करना, स्वीकार करना, कुछ त्यागना, कुछ विचार करना, कुछ महसूस करना, अनुभूति करना, और इस प्रकार से मन का एक कार्य है। तो मन बड़ा सूक्ष्म है, मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भरी हुई हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए ये सारी इच्छाएं जो है हमारी दूसरी चेतना में है, वहां से आ रही। मन केवल हमें दिखाता है कि ये सब आपकी चेतना में है, देख लो अच्छी तरीके। तो मन को पवित्र बनाना है तो भगवान का पवित्र नाम लीजिए, क्योंकि भगवान का जो पवित्र नाम है वो चेतना को शुद्ध करता है। तो जैसी चेतना शुद्ध होगी, बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी, अहंकार भी शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी, मन भी शुद्ध हो जाएगा, इंद्रियां भी शुद्ध हो जाएंगी हरि नाम लेने से। क्योंकि हरि नाम चेतना को शुद्ध करता है। जो सूक्ष्म है सबसे सूक्ष्म चेतना है, अहंकार से भी शुद्ध है चेतना। तो चेतना जब शुद्ध हो जाएगी, अहंकार शुद्ध हो गया, बुद्धि भी शुद्ध हो गई, मन भी शुद्ध हो गया, ये इंद्रियां भी शुद्ध हो गई। और कुछ? ये आखिरी प्रश्न है। देखिए, हमें कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए, जैसे अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन जो है कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहे हैं, क्षत्रिय होने के नाते युद्ध कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता है। इसी तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं समाज में, अफकोर्स गलत काम नहीं, लेकिन जो भी है आप करते हैं, बाहर रहकर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं वो करिए, लेकिन कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो कहते हैं कृष्ण भावना भावित कर। कृष्ण भावना भावित का मतलब है जो भी मैं कार्य कर रहा हूं मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। मैं अपने कार्य को इस तरह से केंद्रित करूंगा या उसको इस तरह से करूंगा कि उससे मैं भगवान को प्रसन्न करूं। भगवान तो खुश हैं, हमसे खुश रहे। भगवान तो खुश हैं, भगवान को खुश करने की जरूरत नहीं है हमें। भगवान हमेशा खुश हैं, लेकिन हमसे खुश हों इसलिए हमें करना है। उनके लिए, उनके प्रसन्नता के लिए करना है। उनको खुश करने से या हम खुश करते हैं उनको कि हमसे खुश हो जाए, तो उसी में हमारी प्रसन्नता है।